सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत।
आप सुन रहे हैं सूत्रधार प्रस्तुति वेद व्यास की महाभारत और मैं हूँ आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा। आज हम शुरुआत करेंगे हमारे 13वें एपिसोड की। इस एपिसोड में हम जानेंगे क्या भीम को 10,000 हाथियों का बल प्राप्त होगा और क्या हस्तिनापुर लौटकर भीम सभी को दुर्योधन के द्वारा किए गए छल के बारे में बताएंगे। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले चलिए लेते हैं एक छोटा सा रीकैप। हमारे आखिरी एपिसोड में पांडु और माद्री स्वर्ग सिधार गए थे। उनके जाने के बाद पूरा हस्तिनापुर शोक में डूब गया था। चारों ओर दुख के बादल छाए हुए थे। अपने पुत्र को खोने के बाद माता अंबालिका की हालत किसी से भी देखी नहीं जा रही थी। व्यास जी के कहने पर माता सत्यवती अपनी दोनों पुत्रवधुओं के साथ वन में तपस्या करने के लिए चली गई। वहां उन्होंने अपने तप के बल से स्वर्ग प्राप्त किया। यह निश्चित हो गया था कि दुर्योधन और उसके सभी भाई धरती पर अधर्म फैलाने के लिए ही जन्मे हैं। धीरे धीरे सभी पांडव और कौरव बड़े हो रहे थे और साथ ही साथ दुर्योधन के मन में पांडवों के लिए द्वेष भी बढ़ता जा रहा था। एक दिन दुर्योधन ने भीम को मारने का षड्यंत्र रचा और उसके खाने में कालकुट नाम का विषैला पदार्थ मिला दिया। इसके बाद उसने भीम को रात में बांधकर गंगा नदी में फेंक दिया, जहां कई नागों ने भीम के शरीर को डसा, जिसकी वजह से उसके शरीर का विष उतर गया और वह जाग उठा। अंत में नागराज वासुकी और आर्यक वहां आ पहुंचे और उन्होंने भीम को कुंड का रस पिलाने का निश्चय किया, जिससे भीम को 10,000 हाथियों का बल प्राप्त हुआ। चलिए कथा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। नागराज आर्यक के सुझाव को सुनकर नागराज वासुकी ने कहा, ऐसा ही हो। तब नागों ने भीम के लिए स्वस्ति वाचन किया। स्वस्ति वाचन देवराज इंद्र और भगवान सूर्य की स्तुति का मंत्र है।
ओम भद्रम कर्णे श्रुणुयाम देवाः भद्रम पश्यमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरंगैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति।
फिर वे पूर्व विमुख होकर यानी के पूर्व की ओर मुख करके भीम को रस पिलाने लगे। भीम एक ही सांस में एक कुंड का रस पी जाते और देखते ही देखते भीम ने 8 कुंडों का रस पी लिया। इसके बाद नागों ने भीम को विश्राम करने के लिए एक दिव्य शैया दी, जिस पर वे सुख पूर्वक सो गए। दूसरी ओर सभी लोग भीम के बिना ही हस्तिनापुर लौट गए थे, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद भीम उनसे पहले ही प्रस्थान कर गए हैं। दुर्योधन भीम को नगर में ना देखकर बहुत खुश था। वहीं युधिष्ठिर को भीम की चिंता खाए जा रही थी। युधिष्ठिर अपनी माता कुंती के पास गए और उनसे पूछा, माँ क्या भीमसेन यहाँ पर आया है? नहीं आया तो कहाँ गया होगा? मुझे वह कहीं नहीं दिखा, इसलिए मुझे लगा कि शायद वह हमसे पहले ही वापस लौट गया होगा। क्या आपने उसे कहीं भेज दिया है? लेकिन भीम तो राजमहल वापस आया ही नहीं था। अब भीम की चिंता से आतंकित हो उठे युधिष्ठिर ने दोबारा कहा, माता क्या भीम जहां सोया था उसे वहीं किसी ने मार दिया है? युधिष्ठिर के ऐसा पूछने पर कुंती घबरा गई और बोली, बेटा मैंने भीम को नहीं देखा है, वह यहाँ नहीं आया है। कुंती हड़बड़ी में विदुर के पास गई और उन्हें भी यह समाचार दिया। साथ ही उन्होंने यह भी चिंता जताई कि कहीं दुर्योधन ने तो भीम को नहीं मार दिया है, क्योंकि दुर्योधन हमेशा भीम से बैर रखता था। विदुर ने कुंती से कहा,
महारानी, महर्षि वेदव्यास जी ने कहा था कि आपके पुत्र दीर्घजीवी हैं। आप उनकी चिंता न करिए और कृपा करके दुर्योधन के बारे में ऐसा कुछ भी मत कहिए जिसकी वजह से आपके बाकी पुत्रों को हानि हो। निश्चित ही भीम वापस लौट आएगा।
अब आपको वापस ले चलते हैं नागलोक में। आठ कुंड का पानी पीकर भीम ने 8 दिनों तक विश्राम किया। जब भीम के द्वारा पिया गया रस पच गया, तब वह जाग उठा। अब भीम में 10,000 हाथियों का बल है और वह पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। भीम के जागने पर नागों ने कहा, महाबाहु, तुमने जो रस पिया है उसके द्वारा तुम्हें 10,000 हाथियों का बल प्राप्त होगा और तुम युद्ध में अजय हो जाओगे। आज तुम इस दिव्य जल से स्नान करो और अपने घर लौट जाओ। कुरुश्रेष्ठ, तुम्हारे बिना तुम्हारे भाई और माता दुख से व्याकुल हुए जा रहे हैं। तब भीम ने स्नान किया और शुद्ध होकर अपने श्वेत पुष्पों की माला धारण की, जिसके बाद महाबली भीम ने विषनाशक सुगंधित औषधियों से बनी हुई खीर खाई। अब उनके ऊपर किसी भी विष का असर नहीं हो सकता था। इसके पश्चात एक नाग ने भीम को अपने सर पर नदी से ऊपर उठाकर नागलोक से बाहर निकाल दिया। नागलोक से बाहर निकलते ही भीम अपनी माँ और भाइयों के पास राजमहल में जा पहुँचे। महल में पहुँचकर भीम ने अपनी माता और बड़े भाई युधिष्ठिर को प्रणाम किया और छोटे भाइयों को हृदय से लगा लिया। भीम ने अपनी माता और भाइयों को उनके साथ हुए षड्यंत्र के बारे में बताया कि कैसे दुर्योधन ने उसे खाने में विष देकर सोते समय नदी में फेंक दिया। भीम ने उन्हें नागलोक में हुई सारी घटना भी बताई। भीम की बातें सुनकर सभी को बहुत दुख हुआ। यहाँ पांडवों को दुख हुआ और दूसरी ओर दुर्योधन को ठेस पहुंची कि भीम अभी भी जीवित है। लेकिन अब सभी पांडव सावधान रहने लगे। दुष्ट दुर्योधन ने भीम के प्रिय सारथी का गला घोटकर उसे मार दिया। उस समय भी विदुर ने कुंती को चुप रहने की सलाह दी, लेकिन दुर्योधन यहाँ नहीं रुकने वाला था। उसने दोबारा भीम को मारने के लिए कालकूट विष उसके खाने में डाला और इस बार एक भारी मात्रा में। दुर्योधन इस बात से अनजान था कि भीम पर किसी भी विष का असर नहीं होने वाला है। भीम ने सारा भोजन खा लिया और खाने में मिले हुए विष को भी बड़ी सरलता से पचा लिया। अब भीम के उदर यानी के पेट में वृक नाम की अग्नि थी, जिसमें किसी भी विष को पचाने की क्षमता थी। इस तरह दुर्योधन, कर्ण और शकुनी हमेशा पांडवों को मारने का अवसर ढूंढा करते थे। अब पांडव भी यह जान गए थे, लेकिन विदुर के रोकने के कारण हमेशा चुप रहा करते थे। सभी कौरव सारा दिन खेल कूद में लगे रहते थे और वे दिन ब दिन उद्दंड होते जा रहे थे। इसीलिए राजा धृतराष्ट्र ने उन सभी को गुरुकुल भेजने का निश्चय कर लिया। उन्हें शिक्षा प्रदान करने हेतु गौतम गोत्रधारी कृपाचार्य जी को बुलाया गया। उन्हीं को सभी राजकुमारों का गुरु बनाकर राजकुमारों को उन्हें सौंप दिया गया। तो इस तरह हमने महाभारत के आदि पर्व के अंतर्गत 128वां अध्याय पूरा कर लिया है। अब मैं आपको कृपाचार्य के जन्म की कथा सुनाती हूँ। कृपाचार्य शास्त्रों में पारंगत विद्वान थे, जिनका जन्म सरकंडे के समूह से हुआ था। महर्षि गौतम के शरद्वान गौतम नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र थे। ऐसा कहा जाता है कि वह सरकंडे के साथ उत्पन्न हुए थे। उनकी बुद्धि वेदों के अध्ययन से ज्यादा धनुर्वेद में लगती थी। उस समय अन्य ब्रह्मचारी वेदों का ज्ञान पाने के लिए तपस्या किया करते थे और वह अस्त्रों शस्त्रों की विद्या पाने के लिए तपस्या किया करते थे। वह केवल धनुर्वेद में ही पारंगत नहीं थे, उनकी तपस्या की भी कोई तुलना नहीं थी। शरद्वान गौतम ऋषि की भारी तपस्या और ज्ञान को देखकर देवराज इंद्र चिंता में पड़ गए थे। तब देवराज इंद्र ने जानपदी नाम की एक देव कन्या को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। देवराज ने कहा,
जाओ देव कन्या, तुम शरद्वान गौतम की तपस्या में विघ्न उत्पन्न करो।
देवराज की आज्ञा पाकर जानपदी शरद्वान ऋषि के आश्रम में आ पहुंची और ऋषि को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास करने लगी। शरद्वान ने एक वस्त्र धारण करने वाली जानपदी को वन में देखा। पूरे संसार में उसके शरीर की तुलना नहीं थी। उसे देखते ही शरद्वान प्रसन्न हो गए। शरद्वान में तपस्या की प्रबल शक्ति थी। वह दूर से ही उस देव कन्या को देख रहे थे, लेकिन उनके मन में काम घर कर गया था। उन्हें पता नहीं चला और उनका वीर्य सरकंडे पर गिरकर दो भागों में बट गया। ऋषि शरद्वान गौतम का वंश आगे कैसे बढ़ा और क्या जानपदी उनकी तपस्या को भंग कर पाई, ये जानने के लिए आपको लौटना होगा हमारे अगले एपिसोड में। उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है MySutradhar। साथ ही साथ ऐसी ही अनेक रोचक पौराणिक कथाओं के वीडियो देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सूत्रधार ऐप। हमारी ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यहाँ आपको हर एक कहानी सुंदर चित्रण और सटीक फैक्ट्स के साथ मिलेगी। इसके अलावा आप श्री राम कथा, मिनी टेल्स पॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश, नल दमयंती प्रेम कथा हिंदी इंग्लिश तथा ऐसी ही अनेक कहानियाँ अपने मन पसंद ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। याद रखिएगा, हम हर सोमवार और शुक्रवार आपसे मिलते रहेंगे।